और संध्या के समय आज क्योंकि संडे है, आज संडे प्रोग्राम है, महाराज 8 से 9 तक प्रवचन करेंगे। कल से 6 से 8 तक रूपा जी के बारे में और के गोचरों में चरित्र से सिंपल लिविंग राइट थिंकिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर 6 से 8 तक महाराज की बात करेंगे। मैं और सलाह लेते हुए महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो पधारे और उनसे साथ में करूँगा कि वो अपना प्रवचन आ रहे हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। नंद महाराज प्रभु ने तो बहुत कुछ कह डाला, अलग अलग स्थानों में जाते हैं तो ये एक समस्या होती है और फिर बैठ के रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। चंडीगढ़ में यहाँ हम शायद 12 साल के बाद आ रहे हैं। इसके पहले भी और एक दो बार आए थे, तो यहाँ का मंदिर तो विशेष है। सबसे पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा मंदिर तो मायापुर के बाद और कहीं नहीं है। वातावरण भी इतना सुंदर है यहाँ पर, लेकिन जो मंदिर है वो केवल ईंटों से नहीं बनती है, मंदिर भक्तों से बनती है। और आप सब यहाँ इतने अच्छे भक्त आ रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, राधा माधव जी की सेवा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। इतने वर्षों से मैं चंडीगढ़ मंदिर को देखते आया हूँ, हालांकि पिछले अनेक वर्षों से इतने करीब से नहीं देख पाया, परंतु पहले भी आ चुका हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे प्रगति हर कदम पर होती जा रही है। ये बड़े प्रसन्नता की बात है। यहाँ नंद महाराज प्रभु और उनके साथ में जित और भक्त हैं सब मिलजुल कर आप सब इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के निर्देशन के अनुसार उनके आश्रय में रह के, तो बहुत अच्छी बात है ये। और ऐसे ही यहाँ चंडीगढ़ मंदिर या राधा माधव मंदिर के कार्यों को बढ़ाते रहिएगा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Radha Madhav Radhe Jai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhupada हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल भागवतम की जय निताय गोप प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय
महाराज की जय।
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नंद महाराज प्रभु ने मुझे निवेदन किया था कि सुबह के भागवत क्लास में या तो आप भरत महाराज के ऊपर कुछ कहिए या वृत्रासुर के बारे में। तो हमने सोचा महाराज भरत के चरित्र का वर्णन ठीक रहेगा यहाँ इन चार दिनों में सुबह श्रीमद् भागवत क्लास में भरत महाराज के बारे में कुछ कहने का प्रयास हम करेंगे। भरत महाराज का नाम तो आप सबने अवश्य सुना है, क्योंकि भरत महाराज के बाद ही इस देश का नाम और बल्कि सारे पृथ्वी का नाम भारतवर्ष है। ऐसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके पहले भारतवर्ष अजनाभ वर्ष कह के जाना जाता था, क्योंकि एक राजा थे जिनका नाम था राजा नाभि, इनके पीछे ये अजनाभ वर्ष कहलाता था। वैसे ये पांचवें स्कंद की कथा है श्रीमद् भागवत की, और इसके पहले चौथे स्कंद में हम ध्रुव महाराज की कथाएं सुन चुके हैं। वैसे ध्रुव महाराज के पिता थे महाराज उत्तानपाद, उनके पिता थे स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के एक दूसरे पुत्र भी थे जिनका नाम था महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज के पुत्रों में से एक थे आग्निध्र। महाराज आग्निध्र के अनेक पुत्र हुए, उनमें से एक थे महाराज नाभि, जिनके पीछे ये पृथ्वी या ये देश अजनाभ वर्ष कहलाता था। और इनके बाद इनके अनेक पुत्रों में से प्रमुख थे महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव का नाम भी आप सब ने सुना है। महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। आजकल एक बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस जमाने में सत्ययुग में त्रेता युग में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, सब आज्ञाकारी हुआ करते थे बच्चे, और माता पिता भी वैसे ही आदर्श हुआ करते थे। तो आजकल तो बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक बड़े राज्य को संभाला जा सकता है, लेकिन एक कुटुंब को परिवार को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो खैर महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इन 100 पुत्रों में से जो अलग अलग पुत्र थे उनके वर्ण अलग अलग थे। आप वर्ण और आश्रम जानते हैं ना? आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये एक गलत धारणा है समाज में। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग वर्णाश्रम धर्म को नहीं समझते हैं, उसको जाति समझते हैं। जो जाति से के नाम से जाना जाता है उसमें कितने सारे झगड़े हो रहे हैं, कितना खून खराबा हो रहा है, कितने मतभेद हो रहे हैं। आजकल आधुनिक काल में भारतवर्ष में एक बड़ी विकट समस्या बन गई है जाति का विषय। चुनाव में लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, समाज का भेद होता है जाति के नाम पर, वैर उत्पन्न हो जाता है लोगों के बीच में। परंतु ये जाति क्या चीज है? ये वर्ण के आधार पर जाना जाता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्या चीजें हैं? ये क्या है क्या ये सब? भगवान तो भगवत गीता में बताते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ये मेरी सृष्टि है, मैंने बनाए हैं ये चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसीलिए ये परिपूर्ण हैं, ये सही हैं। यदि भगवान ने न बनाया होता, यदि हमने ही अपने मनमाने ढंग से कुछ कह दिया होता, बना दिया होता तो अलग बात थी, लेकिन ये स्वयं भगवान ने बनाया है। भगवान ने स्वयं समाज का विभाजन किया है इन चार वर्णों में। और किस आधार पे भगवान ने ऐसे विभाजन किया है? गुण और कर्म के आधार पर। भगवान ने जन्म शब्द का प्रयोग नहीं किया है यहाँ पर गीता में, जन्म कर्म ऐसे नहीं कहा, उन्होंने गुण कर्म कहा है। सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण के आधार पे जैसे जैसे इन तीन गुणों का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, वैसे वैसे वो व्यक्ति का वर्ण बनता है। तो जो व्यक्ति सत्व गुण के अधीन है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो सत्व और रजस और विशेष करके रजोगुण के अधिक प्रभाव में है ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहते हैं, और जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से अधिक प्रभावित है वो वैश्य कहलाता है, और जो तमोगुण से ज्यादा प्रभावित होता है वो शूद्र होता है। बस, तो इसमें जाति भेद का सवाल कहाँ आता है? जन्म का सवाल नहीं आता इसमें। यदि कोई व्यक्ति तथा कथित शूद्र परिवार में जन्म क्यों न ले, यदि उसके गुण एक ब्राह्मण के हैं, यदि वो सात्विक व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। यदि किसी तथा कथित ब्राह्मण के घर में किसी का जन्म हो परंतु वो सात्विक न हो, वो तामसिक व्यक्ति हो, तो वो तो शूद्र कहलाएगा, भले उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में क्यों ना हुआ हो। तो ये जन्म की बात नहीं है, गुणों की बात है, कर्मों की बात है। हालांकि ये भी हमें कहना चाहिए कि जन्म का भी महत्व होता है, क्योंकि इस जन्म में जो परिवार हमने पाया है, जो शरीर हमने पाया है, वो भी तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही तो पाया है। जैसा हमने पूर्व जन्मों में तीन गुणों का संग किया है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और उन गुणों के अधीन होकर, उन गुणों के संपर्क में आकर जैसे हमने कर्म किए हैं, वैसे ही तो हमें अब एक शरीर मिलेगा, एक माता पिता मिलेंगे, एक कुटुंब मिलेगा। तो यद्यपि जन्म का भी महत्व होता है, क्योंकि एक अनुकूल वातावरण या माहौल मिल जाता है व्यक्ति को कि वो एक अमुक प्रकार का, एक अमुक प्रकार की वृत्ति का अनुशीलन करे, परंतु अंततः व्यक्ति के कर्मों पर, उसकी वृत्ति पर निर्भर है। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि यदि एक बच्चा एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, सभी लोग डॉक्टर हैं घर में, दादा दादी नाना नानी माता पिता सब डॉक्टर हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बच्चा जन्म से ही डॉक्टर बन जाएगा? हाथ में स्टेथोस्कोप लेते हुए माँ के गर्भ से जन्म लेता है? नहीं, उसे तो बहुत पढ़ाई करनी होगी, स्कूल में पास कर होना होगा, फिर आगे मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना होगा, बहुत वर्षों के बाद फिर वो हो सकता है डॉक्टर, नहीं भी हो सकता, हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो ही नहीं पाए वो। लेकिन हाँ, एक माहौल अनुकूल है, घर में डॉक्टर की बातें चलती हैं, बचपन से वो देखता है, बचपन से सुनता है, एक प्रेरणा मिलती है, ये सब है, परंतु जन्म से ही वो डॉक्टर नहीं बनता, उसे योग्य होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई ब्राह्मण अपने आप को कहलाना चाहता है तो उसे इस योग्य होना चाहिए। केवल तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से काम नहीं चलेगा। और इसका सबूत, इसका प्रमाण यहां महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्रों में है। महाराज ऋषभदेव क्षत्रिय थे और वो सारे विश्व के सम्राट थे, और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज भरत, और उनके बाद और 9 पुत्र थे जो क्षत्रिय स्वभाव के थे। तो इन 10 पुत्रों ने मिलकर सारे राज्य को, सारे पृथ्वी को संभाला। वैसे हुआ करता था वैदिक काल में कि एक विश्व सम्राट हुआ करते थे और उनके नीचे अनेक ऐसे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे बड़े राजा, किसी का राज्य छोटा किसी का बड़ा, और ऐसे विश्व सम्राट के अधीन होकर ये अन्य जो राजाएं हैं ये पृथ्वी के अनेक अनेक विभिन्न भागों को संभालते थे, और इस तरह से एक व्यक्ति सारे पृथ्वी को संभाल लेता था, और ये छोटे जो राजा थे वो प्रजा से कर एकत्र करके इसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो विश्व सम्राट को देते थे। इसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने पृथ्वी का राज्य संभाला, राजा परीक्षित ने पृथ्वी का राज्य संभाला। वैसे जब विश्व सम्राट की बात आती है और कैसे राज्य के जिम्मेदारी को बांटा जाता है भाइयों के बीच में या बच्चों लड़कों के बीच में बच्चों के बीच में, एक बात याद आती है कि एक बार ये हम भारत से एक सन्यासी गए थे अफ्रीका में। वैसे ये सन्यासी इस्कॉन के सन्यासी नहीं थे, ये एक 40-50 साल पहले की बात है। इथियोपिया नाम का एक देश है अफ्रीका में, आपने सुना है ना। और इथियोपिया में आप देखेंगे कि वहां के जो लोग हैं अधिकतर भारतीय जैसे दिखते हैं, अफ्रीकन नहीं दिखते, वो दिखने में बिल्कुल अफ्रीकन नहीं लगते। और इथियोपिया के जो अफ्रीका के दूसरे देश है वहां जाएंगे तो या तो अरब जैसे दिखते हैं या तो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, उनके बाल उनके शरीर की कांति, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भारतीय दिखते हैं। ये एक दूसरा विषय है, इसके बारे में नहीं जाएंगे नहीं तो इतिहास की कथा हो जाएगी। तो जब ये सन्यासी वहां गए, वहां के राजा थे हेली सिलेसी उनका नाम था, तो उनके पास वो गए और उन्होंने सोचा जब हम भारत से आए हैं तो चलो इनको रामायण का एक भेंट दे दें। तो उनको जब रामायण दिया तो सन्यासी ने सोचा कि शायद उनको पता नहीं होगा कि रामायण क्या है, तो रामायण के बारे में कुछ कहने लगे। तो राजा हेली सिलेसी ने कहा, मैं रामायण तो अच्छी तरह से जानता हूं, हम ये अफ्रीका तो कुश का देश है, हम कुश के वंशज हैं। कुश जानते हैं ना, कौन थे कुश? श्री राम के पुत्र थे ना, लव और कुश। तो श्री राम ने जब अपनी लीलाओं को समाप्त की तो उन्होंने अपने दो पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र दे दिए पृथ्वी के, और अफ्रीका का क्षेत्र कुश के नीचे आ गया। इसलिए हेली सिलेसी नाम के राजा ने उनसे कहा, उस सन्यासी से कहा कि इसलिए अफ्रीका का नाम है कुश द्वीप। द्वीप है ना अफ्रीका, बहुत बड़ा द्वीप है कुश द्वीप। ये राजा कुश यह राज्य किया करते थे। तो कल्पना कीजिए कि पहले के जमाने में वैदिक सभ्यता सब जगह फैली हुई थी, सारे विश्व भर में एक राजा हुआ करते थे। ये वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, कृष्ण भावनामृत का जो पथ है ये सब जगह लोग पालन किया करते थे। 2-3 साल पहले खबर हमने पढ़ी थी कि रूस देश के बीच में कहीं जहां बर्फीला जगह है वहां क्या और कुछ होता नहीं है, वहां वैज्ञानिकों ने एक ढूंढ निकाली, एक मूर्ति भगवान विष्णु की, चतुर्भुज मूर्ति जो 7,000 वर्ष पुरानी थी। अब रूस देश के बीच में 7,000 वर्ष पुरानी एक मूर्ति, वो भी भगवान विष्णु की, कैसे आई? ये एक रहस्य है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त अच्छी तरह से जानते हैं। भागवत श्रीमद् भागवत के आधार पर हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता तो सब जगह फैली हुई थी। विशेष करके जब परशुराम ने दुष्ट क्षत्रियों का दमन किया तो ये सारे क्षत्रिय इधर उधर भाग गए पृथ्वी में, कोई तुर्की में गए, कोई ग्रीस में गए, कोई यूरोप के अलग अलग भागों में गए, कोई ईरान में गए, और ऐसे भारतवर्ष से अलग 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 स्थान में लोग जाके वहां बस गए। पहले तो संस्कृत भाषा बोला करते थे, उसके बाद में भाषा का अपभ्रंश होता गया, होते 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 भाषा परिवर्तित होती गई, और आजकल जो भाषाएं हैं उनको हम पहचान भी नहीं सकते, अलग हो गए हैं। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बताया जाता है, भारत में भी कहते हैं कि हर 12 मील में भाषा बदलती है। जैसे देखते उत्तर भारत में भी जो हिंदी एक जगह में बोली जाती है, दूसरी जगह में हिंदी कुछ अलग ही होती है। किसी कोई भी भाषा को देखिए, गुजराती देखिए, मराठी देखिए, बंगाली देखिए, पंजाब में भी ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से। जिस तरह की पंजाबी एक पंजाब के एक भाग में बोली जाती है, हो सकता है दूसरे इलाके में थोड़ी भाषा अलग हो जाए। तो इस तरह से भाषाएं अलग होती गई, परंतु एक विश्व सम्राट पहले थे। अब इन चीजों में लोग विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं ये सब दंत कथा है, ये ऐतिहासिक घटनाएं थोड़ी है, ऐसे लोग कहते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत ये कोई दंत कथाएं नहीं है, ये तो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इसलिए इनको इतिहास कहते हैं। जैसे उपनिषद, वेद, इनको श्रुति कहते हैं। जो पुराण हैं, उनको स्मृति कहते हैं। और स्मृतियों में इतिहास भी है, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये पुराण है, ये पौराणिक कथाएं हैं, पुरानी कथाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये झूठे हैं, काल्पनिक है, नहीं, सत्य है ये। तो महाराज ऋषभदेव के समय भी ऐसे ही था। महाराज ऋषभदेव विश्व सम्राट थे, और उनके पीछे उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत ने राज्य संभाला, और उनकी सहायता करने के लिए उनके 9 छोटे भाई थे। किसी ने किसी एक भाग को संभाला पृथ्वी का, किसी ने दूसरे भाग को संभाला, और 9 के 9 भाई जो थे वो राजा, सबसे बड़े भाई भरत महाराज के अधीन रहते थे। क्योंकि बड़ा भाई जो होता है वो पिता तुल्य होता है वैदिक सभ्यता के अनुसार। तो ये हुए पहले 10 पुत्र जो क्षत्रिय थे। इसके बाद में 9 पुत्र, ये न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। तो कौन थे? वैष्णव थे, परम वैष्णव थे, आत्म साक्षात्कारी शुद्ध भक्त थे। किस नाम से जाने जाते हैं ये 9 भाई? नव योगेंद्र। और श्रीमद् भागवत में वो उपदेश देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। कौन से स्कंद में उनका उपदेश पाया जाता है? 11वें स्कंद में। किनको उपदेश देते हैं? महाराज निमि को। तो ये नव योगेंद्र, हवि, कवि इत्यादि, ये परम वैष्णव थे, महाभागवत थे। वैसे जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, ये 3 गुणों के अधीन नहीं होते, इसीलिए उनको ब्राह्मण भी नहीं कह सकते। क्योंकि ब्राह्मण कौन होता है? जो सत्व गुण के अधीन होता है। परंतु शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वो तो भौतिक सृष्टि के या 3 गुणों के तो परे होते हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। जो वैष्णव है वो अपने आप ही ब्राह्मण तो होता ही है, लेकिन ब्राह्मण से भी और अधिक होता है। तो ये नव योगेंद्र थे। तो ऐसे 19 पुत्र हुए, और बाकी जितने पुत्र थे वो सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के कार्य को उन्होंने संभाला। देखिए, पिता क्षत्रिय और पुत्र कैसे? 10 पुत्र क्षत्रिय, 9 महाभागवत और बाकी ब्राह्मण। तो ये है वैदिक सभ्यता। इससे ये प्रमाण है कि वास्तव में वर्ण केवल जन्म के आधार पर नहीं निर्धारित किया जाता, गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो खैर, महाराज भरत बहुत अच्छे राजा थे, धर्म परायण थे, स्वयं ही अपने पिता की तरह वो एक महाभागवत शुद्ध भक्त थे भगवान के, और बड़े ज्ञानी थे, शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते थे। एक राजा को ऐसे होना चाहिए। ये तो सत्ययुग आदि की बातें हैं, परंतु यदि एक 3-4 हजार साल पहले की बातें भी हम देखें, 2000 साल पहले की बातें, जब चाणक्य पंडित ने अर्थशास्त्र लिखी, तो यदि हम पढ़ेंगे वहां के राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, राजा की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, तो हमें आश्चर्य होगा। चाणक्य जी कहते हैं कि राजा को कम से कम 4 से 6 घंटे धार्मिक कार्यों में लगा रहना चाहिए। शास्त्रों को सुनना चाहिए, अपने अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। और वैसे राजा का समय ऐसे जाता है कि जैसे उसे सोने के लिए भी समय कम मिलता है, 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे। फिर राजा को बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन राजा यदि धार्मिक न हो और यदि उसको धार्मिक ज्ञान न हो, उसकी वृत्ति धार्मिक न हो, तो राज्य कैसे संभाल पाएगा, कैसे प्रजा का मार्गदर्शन कर पाएगा, कैसे उनको आगे बढ़ा के ले जाएगा धार्मिक पथ में, भगवान की ओर ले जाना प्रजा को। ये राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होता है। इसलिए तो राजा को नार देव कहते हैं। नर से आता है नार, तो नार देव अर्थात जो नर रूप में भगवान या देव के प्रतिनिधि हैं, वो है नार देव। तो राजा को भगवान का प्रतिनिधि क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए वो लोगों को धर्म के पथ में आगे बढ़ाता है। वैसे आजकल भारत में तो ऐसा है ही नहीं, परंतु थोड़े ही वर्षों पहले तक नेपाल देश में ऐसे राजा को भगवान तुल्य माना जाता था। एक 10-20 साल पहले की बात है, ज्यादा दूर इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, 20-30 साल पहले की बात है। राजा को ऐसे सम्मान लोग देते थे। हाँ, आजकल साम्यवादी समाज आदि हो गया है, सब गड़बड़ हो गया है, लेकिन पहले लोग राजा को इतना सम्मान देते थे कि ये भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं। जब 20-30 साल पहले यहां ऐसे प्रथा थी, तो हम समझ सकते हैं कि सत्ययुग में क्या हुआ होगा। ते आदर्श राजा ऐसे हुआ करते थे जो धर्म परायण थे, और वो जानते थे कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य या मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, कि मैं प्रजा को धर्म के पथ पे रखूं, आध्यात्मिक प्रगति इन सबकी होनी चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिस तरह से जो परिवार में प्रमुख होते हैं, उनका मुख्य कर्तव्य ये होता है कि परिवार के सदस्यों को भक्ति के पथ में आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। केवल परिवार का भरण पोषण करना, अनाज देना, कुछ खिलाना पिलाना, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कराना, शादी करा देना, दवाइयां देना, इलाज कराना बीमारी के समय, ये सब तो है ही, परंतु इससे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि परिवार के सदस्यों को कृष्ण भक्ति के पथ में स्थित करा देना। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पिता अपने बच्चों का देखभाल करता है, एक राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा का देखभाल करे। तो प्रजा के लिए राजा एक पिता के समान होता है। जो वात्सल्य भाव पिता और माता का बच्चों के प्रति रहता है, उसी प्रकार से राजा और रानी का भाव प्रजा के प्रति होना चाहिए। तो राजा यदि स्वार्थी रहे तो कैसे प्रजा का देखभाल कर सकता है? माता पिता की विशेषता ये रहती है कि वो त्याग करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने ऊपर असुविधा स्वीकार करते हैं ताकि बच्चों को सुविधा मिल जाए। ऐसे ही गुण होते हैं ना माता पिता के, उसी प्रकार से राजा को ऐसे होना चाहिए। वो कष्ट लेता है अपने लिए ताकि प्रजा सुखी रहे, प्रजा धार्मिक रहे, प्रजा भगवान कृष्ण की ओर आगे बढ़ती रहे। परंतु आजकल दुर्भाग्यवश ऐसे नहीं देखा जाता है ना। मुझे याद है एक 25-30 साल पहले की बात होगी कि इसी इलाके में उत्तर भारत में ही एक नेता थे, राजनेता थे, तो भ्रष्टाचार के आरोप पर उनको पद से निकाला गया। तो बहुत बड़ी बातें हुई थी उन दिनों में, अखबारों में आती थी खबरें। जब एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके खिलाफ ये आरोप लगाया गया है कि आपने आपके रिश्तेदारों की तरफदारी की है और उनको बहुत गलत ढंग से फायदा उनका कराया है आपने, तो क्या ये सही है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे रिश्तेदारों की तरफदारी नहीं करूंगा तो क्या आपके रिश्तेदारों की तरफदारी करूंगा? खुलेआम जैसे बंबई की भाषा में कहते हैं बिंदास, कोई डर नहीं। तो वैदिक काल के राजा ऐसे नहीं थे, भ्रष्ट और स्वार्थी, केवल अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे धन मिल जाए, मुझे कोई एक प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सब नहीं। राजा हो तो महाराज ऋषभदेव जैसे, महाराज भरत जैसे आदर्श राजा, जो भगवान के शुद्ध भक्त हो, जो शास्त्रों को जानते हो, जो प्रजा से प्रेम करते हो, प्रजा की रक्षा जो करें धर्म के पथ में। सबसे बड़ी रक्षा है धर्म, धार्मिक रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं धर्म का पालन करने से, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो महाराज भरत इस बात को भलीभांति जानते थे, इसलिए वो देखते थे कि सारे प्रजा के जो सदस्य हैं वो सब अपने अपने धार्मिक कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों के कर्तव्य कर रहे हैं, जो क्षत्रिय हैं कि वो क्या अच्छी तरह से क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं। इस तरह से वो अपने प्रजा के बीच में जाके देखते थे कि क्या हर एक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है या नहीं, यज्ञ संपन्न हो रहे हैं या नहीं सारे राज्य में। स्वयं भी महाराज भरत ऐसे राज्य ऐसे यज्ञ संपन्न किया करते थे। इस तरह सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि महाराज भरत का राज्य कितना आदर्श था। और आजकल के राजनेताओं को ऐसे श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं शोक करते हुए कि आजकल लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम के बिना। राम राज्य अर्थात जहां किसी को कष्ट न हो, सभी लोग सुखी हों, बड़े प्रेम से आपस में रहते हों, समृद्धि हो, किसी चीज का अभाव न हो, सभी लोग चरित्र से बड़े अच्छे हों, ठीक हों, चरित्रवान हों, गुणवान हों, भाईचारे की भावना से, प्रेम की भावना से सभी लोग आपस में रहें, कोई स्वार्थी न हो, यह है राम राज्य, जहां भगवान को केंद्र बिंदु बनाया जाए जीवन का। जिस समाज में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है तो वहां पे सुख शांति समृद्धि कैसे हो सकती है? तो भरत महाराज के राज्य से हम ये सब जान सकते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भरत महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान वासुदेव का स्थान क्या है और देवताओं का स्थान क्या है। जब यज्ञ हुआ करते थे तो यज्ञों के अवशिष्ट को या फल को स्वीकार करने के लिए देवता भी आते थे। परंतु महाराज भरत भली भांति जानते थे कि वास्तव में यज्ञ के भोक्ता केवल विष्णु है। यज्ञ भोग यज्ञ कृत यज्ञ है। महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में जब भगवान विष्णु के हजार नामों की का उल्लेख किया जाता है तो उस समय भगवान विष्णु के तीन नाम आते हैं, यज्ञ भुक, यज्ञ कृत और यज्ञ। यज्ञ भुक अर्थात यज्ञ के भोक्ता, यज्ञ कृत अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले, और यज्ञ मतलब स्वयं यज्ञ। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण यज्ञ के भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति ऋच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये शांति का सूत्र है। यदि हम जान लेते हैं कि समस्त यज्ञों के तपस्याओं के भोक्ता केवल कृष्ण हैं, कृष्ण ही स्वामी हैं, मालिक हैं हर चीज के, और वो हमारे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, इन तीन चीजों को जानने से हमारे हृदय में शांति हो सकती है, हमारे समाज में शांति हो सकती है। तो ये है यज्ञ भुक। यज्ञ कृत मतलब वास्तव में कृष्ण ही करता है, और यज्ञ मतलब यज्ञ ही कृष्ण है। तो इस बात को भरत महाराज अच्छी तरह से जानते थे और देवताओं में और भगवान में अंतर क्या है इस बात को भी जानते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के पैरों को मालिश कर रहे हैं तो हम किनकी सेवा करते हैं, पैरों की सेवा करते हैं या उस व्यक्ति की सेवा करते हैं? उस व्यक्ति की सेवा करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु के अंग होते हैं, शरीर के अलग अलग अंग होते हैं। तो जब हम देवताओं की सेवा करते हैं वास्तव में कृष्ण की सेवा है, लेकिन हम नहीं जानते। अधिकतर जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि पैर जो है या हाथ है वो शरीर से अलग है कुछ। लेकिन यदि हाथ को काट दिया जाए, हाथ की बात तो दूर है, उंगली को भी काट दिया जाए और अलग से रखा जाए तो उस उंगली की क्या कीमत है? कोई मूल्य नहीं है। लेकिन उस एक उंगली को फिर से जोड़ने के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे। किसी कारण से हमारी उंगली कट जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो हम क्या नहीं करेंगे उस उंगली को पुनः जोड़ने के लिए। लेकिन जब वो उंगली अलग है शरीर से तब कोई मूल्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम देवताओं का संबंध भगवान श्री कृष्ण से न देखकर उनको स्वतंत्र समझते हैं तो उस समय हमारी उपासना गलत कहलाती है। श्री कृष्ण जड़ के पेड़ के जड़ हैं, सृष्टि के जड़ हैं। इसलिए श्री कृष्ण की उपासना करने से, वासुदेव को प्रसन्न करने से समस्त देवताएं भी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी महाराज भरत के बारे में कहते हैं कि वो यद्यपि कर्म कांड कर रहे थे, क्योंकि वो तो समय ऐसे था, युग था ऐसे, परंतु उनका उद्देश्य था भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को संपन्न करना। ऐसे भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए कार्य करते करते महाराज भरत का हृदय शुद्ध होता गया, शुद्ध होता गया और वो भक्ति के पथ में आगे बढ़ते गए। जैसा कि आप जानते हैं उन दिनों में लोगों की आयु बहुत अधिक हुआ करती थी। आजकल कोई 80-90 साल तक रहता है, कोई 100 साल जीता है तो अखबार में फोटो उसका छप जाता है कि ये 100 साल का आदमी हो गया है ना। और जो इतने दुर्भाग्यशाली नहीं होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। नहीं तो कलयुग में और आगे जीना बड़ी मुसीबत है। वैसे ही जीवन का संघर्ष और उसके ऊपर बुढ़ापा बस। तो पहले भरत महाराज की आयु, भरत महाराज ने अपने राज्य का भोग कितने सालों तक किया, आप में से कोई बता सकते हैं, कोई अनुमान लगा सकते हैं? बताइए, किसी कोई बोलेंगे कुछ? कितने सालों तक महाराज भरत ने राज्य का भोग किया और राज्य को संभाला? 1000 वर्ष? 1 करोड़? बहुत अच्छा, 1 करोड़ साल। वर्ष अयुत सहस्र, ऐसे सुखदेव जी कहते हैं। सहस्र मतलब 1000, अयुत मतलब 10,000। 1000 × 10,000 मतलब 1 करोड़। मैं गणित सही है ना? मैंने देखिए, 1000 × 10,000 कितना होता है? 1 करोड़ होता है ना। तो 1 करोड़ साल उन्होंने राज्य संभाला। और उस दौरान ऐसा नहीं है कि उनके भाई सोचते रहे कि कब इनका राज समाप्त हो जाएगा और कब हम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। नहीं, उनके पुत्रों ने ऐसे सोचा। वो तो भले बहुत प्रसन्न थे महाराज भरत के राज्य से। जिस तरह से भरत और दूसरे भरत हैं जो अपने बड़े भाई राम की सेवा करते थे, वो भी उन्होंने कभी भी राज सिंहासन की लालसा नहीं की। आप तो रामायण की कथा जानते हैं कि भरत महाराज ने राम के वनवास में जाने के बाद भी उनकी पादुकाओं का की उपासना की, पादुकाओं को सिंहासन पर रखा, वो नहीं बैठे स्वयं। वैसे इतिहास में अनेक प्रसिद्ध भरत हुए हैं। एक तो श्री राम के छोटे भाई भरत, दूसरे कौन से और हैं? दुष्यंत के पिता महाराज भरत, दुष्यंत के पुत्र क्षमा कीजिए, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराज भरत, वो दूसरे जिनका वर्णन कालिदास ने किया है, और तीसरे हैं ये हम महाराज भरत, जिनके पीछे इस पृथ्वी लोक का नाम या इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। तो 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने राज किया, और जब उनका समय हुआ समाप्त, उन्होंने सोचा कि अब मुझे वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। कभी कभी कलयुग में भी ऐसे देखा जाता है कि लोग इस तरह से जीते हैं कि मानो उनको भी 1 करोड़ साल जीना है, इसलिए रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे कहा करते थे कि आजकल राजनेता ऐसे हैं कि राजगद्दी, भले उनकी आयु कितनी भी क्यों ना हो, वो राजगद्दी से उठने का वहां नाम ही नहीं लेते जब तक कोई गोली से उनको उड़ाए नहीं। लेकिन वैदिक सभ्यता क्या है कि आदमी को सही उम्र पहुंचने तक उसे उसके पहले ही बल्कि त्याग देना चाहिए, अपने बच्चों को भाइयों को जो भी है सौंप देना चाहिए और भगवान की तलाश में निकलना चाहिए वन में। इसलिए तो इसे वानप्रस्थ कहते हैं, वन में प्रस्थान करना। पंचाशोर्धम वनम ब्रजेत, उस जमाने में यदि 100 साल की जीवन की अवधि हो व्यक्ति की, तो 50 साल की आयु में उसे वन में प्रस्थान करना चाहिए। आजकल ऐसी बातें हम कहेंगे तो लोगों को हृदय का दौरा पड़ जाएगा। और आजकल के राजनीति के जीवन में तो 50 साल में तो व्यक्ति अभी तक नौसुखिया माना जाता है, अभी अभी उसकी शुरुआत होती है, परिपक्व नहीं माना जाता 50 साल की आयु में राजनीति के क्षेत्र में आजकल। लेकिन महाराज भरत ने ऐसे नहीं किया, अच्छी तरह से तैयारी कर ली, फिर जो भी अपनी पैतृक संपत्ति थी उसका बंटवारा कर लिया। यहां पर शब्द का प्रयोग है यथा दायम, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनु है ना, जिन्होंने हमारे लिए सारे मनुष्य समाज के लिए नियम बनाए हैं, मनु के बाद ये शब्द आता है मनुष्य या मानव, अंग्रेजी में मैन, अंग्रेजी शब्द है ना मैन, ये भी मनु से आता है। जितने भी भाषाएं हैं पृथ्वी लोक के ऊपर वो सब संस्कृत भाषा से ही आते हैं, इसलिए संस्कृत को देवनागरी कहते हैं, जो देवता देवलोक में भाषा बोली जाती है। फिर यहाँ पर अपभ्रंश होते होते ये अन्य भाषाएं आनी, लैटिन ग्रीक और जितने भी और भाषाएं हैं दुनिया की। तो प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं कि दाय भाक नियम होता है मनु जी का, मनु संहिता मनुस्मृति में, और इस दाय भाग नियम के अनुसार जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है, अर्थात जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमने प्राप्त किया है, उसको हमें बेचना नहीं चाहिए, उसे हमें हमारे वंशजों को हमारे बच्चों को सौंप देना चाहिए। जीते जी पैतृक संपत्ति का भोग कर सकते हैं, वो हमारा कर्तव्य, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, परंतु हमारे बाद ये पैतृक संपत्ति हमारे बच्चों को जानी चाहिए। जो हमने कमाकर खरीदा है या जो हमने बनाया है उसको हम बेच सकते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिला है उसको बनाए रखना चाहिए और बच्चों में बांट देना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो उनके संपत्ति को उनके हिस्से को वो अपना भोग करे जीते जी, और आगे चल के वो उनके बच्चों को सौंपते हैं। ये है दाय भाग नियम, कि जो अधिकार से पाया जाता है जो पूर्व, वो जो अधिकार हमारा कितना है वो भी मनु समझाते हैं। तो महाराज भरत ने ऐसे ही दाय भाग नियम के अनुसार अपनी संपत्ति को बांट दिया अपने बच्चों के बीच में, और फिर वो निकल पड़े वहां से। ये दाय भाग शब्द आपने कहीं और सुना है? कहां सुना है? तत्ते अनुकंपाम, इस श्लोक में बहुत अच्छा। तो ब्रह्मा जी की बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये ना, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। ये श्लोक आप में से कितने भक्तों ने सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। और कितने भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ है? बहुत अच्छा। तो वैसे करते हैं, इस श्लोक को हम साथ साथ बोलते हैं, ठीक है? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाद्वपूर्वे विदधं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को सहन करता है, ये जानकर कि ये सारे कष्ट मुझे इसलिए मिल रहे हैं कि मैंने पूर्व जन्मों में बहुत पाप किए हैं, मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के अनुसार मुझे ये फल मिल रहा है जो कष्ट के रूप में मेरे जीवन में आ रहा है, और जो व्यक्ति ऐसे सोच के संतुष्ट रहता है, भगवान की कृपा या उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करता है, और ऐसे प्रतीक्षा करते करते हृदय अपने हृदय से, वाक अपने वाणी से, वपुः अपने कार्यों से या शरीर से, वो भगवान को नमस्कार करता है, अर्थात भगवान की सेवा में रत रहता है, ऐसे व्यक्ति दाय भाग, वो आपके मुक्ति पदे से दाय भाग, वो मुक्ति पद को पाने के लिए एक अधिकारी व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि आपका धाम उसकी पैतृक संपत्ति है। जैसे कहते हैं लोग, है ना, आप कुछ भी करोगे कि आप आपके पिता की संपत्ति है क्या, ऐसे लोग झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं ना। तो भक्त के लिए उसके पिता की संपत्ति क्या है, सारा वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत तो पिता की संपत्ति है, भगवान कृष्ण की संपत्ति है। तो हम वंशज हैं, तो हमारा अधिकार है दाय भाग नियम के अनुसार हम भोग कर सकते हैं उसको। लेकिन जब हम जाएंगे तो वैकुंठ जगत हमारे बच्चों को देके जाना चाहिए, अर्थात उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम वैकुंठ चले जाएं या न भी जाएं और उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में कुछ नहीं बताएं। नहीं, बच्चों को भी कृष्ण भावनामृत का आनंद और ज्ञान देना चाहिए। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाल जब इस श्लोक के ऊपर टीका लिखते हैं तो वो कहते हैं कि एक बच्चा है, अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, आजकल बहुत कुछ करते हैं वो अलग बात है। बस उसे जीवित रहना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं केवल उसे जीवित रहना चाहिए। हाँ, आजकल तो बहुत और बातें समझानी पड़ती हैं, हाँ आज्ञाकारी होना चाहिए वगैरह, परंतु वैदिक सभ्यता में ये तो एक सर्वविदित बात थी कि पुत्र को तो आज्ञाकारी होना ही है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आजकल कहना पड़ता है कि बच्चे को आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक बच्चे को केवल जीवित रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि केवल जीवित रहने से तो स्वाभाविक है कि पिता की संपत्ति तो मिलने ही वाली है, और किसको जाएगी संपत्ति। तो ठीक उसी प्रकार यदि किसी भक्त को अपने पिता का वैकुंठ जगत चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में जीवित रहना चाहिए, बस भक्ति करते रहना चाहिए, फिर निश्चित ही हमें भी वैकुंठ जगत की प्राप्ति होगी, वो हमारी पैतृक संपत्ति है, हमें मिलेगी, भगवान देने के लिए तैयार है दाय भाग नियम के अनुसार। मैं भी तुम्हें देना चाहता हूं, चलो मेरा धाम ले लो तुम। ध्रुव महाराज, देखिए भगवान के गुण कैसे हैं। जब ध्रुव महाराज एक ऐसा राज्य चाहते थे कि उनके पिताजी, उनके ध्रुव महाराज के पिताजी थे महाराज उत्तानपाद, उनके पिता थे स्वयंभुव मनु, उनके दादा, और स्वयंभुव मनु के पिता थे ब्रह्मा जी। तो ध्रुव महाराज जी चाहते थे कि ब्रह्मा जी से भी एक अधिक श्रेष्ठ मुझे राज्य चाहिए। अब ऐसे कौन सा राज्य हो सकता है? सारा ब्रह्मांड का राज्य ही ब्रह्मा जी का है, फिर भी ध्रुव महाराज ऐसे चाहते थे। ध्रुव महाराज थे बड़े बुद्धिमान, जब मांगना है भगवान से कुछ तो ऐसे क्यों ना मांग लेते। हम ऐसे कुछ मांग लेते हैं, हमें कुछ धन दे दीजिए, वर्ल्ड कप मैच जिता दीजिए, है ना, ऐसे कर दीजिए। कभी कभी तो भगवान मान भी लेते हैं, इच्छा पूरी भी कर भी देते हैं। इसलिए कल रात नींद भी नहीं आई थी, इतना हल्ला सब जगह हो रहा था। तो हम यदि केवल भगवान की भक्ति करते करते हम जिए बस, तो भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। दाय भाग नियम, स्वयं भगवान भी दाय भाग नियम का पालन करते हैं। तो खैर, महाराज भरत ने ऐसे बंटवारा कर दिया। बंटवारा करने के बाद फिर वन में प्रस्थान किया और वो चले गए हरिद्वार में। हरिद्वार के पास, ठीक हरिद्वार नहीं, पुलह आश्रम नाम के स्थान में जो गंडकी नदी के तट पे है, जहां शालिग्राम शिलाएं हैं। गंडकी नदी का नाम आप सबने सुना है ना? गंडकी नदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शालिग्राम शिलाओं के लिए। शालिग्राम तो भगवान स्वयं है, भगवान विष्णु है, और ये शिलाएं हैं। शिला मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं शिला, जैसे गोवर्धन शिला है वैसे शालिग्राम शिला है। तो शालिग्राम शिला की विशेषता ये है कि ये स्वयं विष्णु हैं। और वो कैसे पहचाने जाते हैं? इन पत्थरों में, इन शिलाओं में चक्र होते हैं, तरह तरह के चक्र, और इन चक्रों की जो निशानी है वो अलग अलग होती है। वैसे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का ये चक्र है, किस प्रकार की शिला है। जैसे जनार्दन शिला है, नरसिंह शिला है, वामन शिला है, तरह तरह की शिलाएं हैं, सब विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये पत्थर उनके ऊपर जो चक्र हैं उनसे जाने जाते हैं, इसलिए ये नदी का नाम चक्र नदी भी है। तो चक्र नदी या गंडकी नदी आजकल नेपाल में है। तो केवल इस नदी में ही हम शालिग्राम शिला पा सकते हैं, और कहीं नहीं शालिग्राम शिलाएं मिल सकती हैं। तो वहां पे गए महाराज भरत पुलह आश्रम में, और उस गंडकी नदी के तट में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। पुलह आश्रम, पुलह नाम के एक संत थे, पुलह पुलस्त्य इत्यादि ऐसे बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे वैदिक काल में। तो वहां जाकर वो रहे, और वहां भगवान की उपासना करने के लिए वो अकेले रह गए। डरे नहीं, मैं जंगल में जाके कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, कौन मेरा देखभाल करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या होगा, और फिर बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल पास में तो है नहीं, क्या होगा। देखिए लोग कितने साहसी होते थे, उनकी श्रद्धा कितनी अटूट होती थी। चले जाते थे वन में अकेले, कभी कभी पत्नी भी साथ में जाती थी वानप्रस्थ में, कभी नहीं जाती थी। दोनों वन में रहते थे, वहां कोई टेलीविजन नहीं, वहां कोई कुछ नहीं, जड़ी बूटियां वहां जो थी, कंद मूल जो थे वहां, उस पर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। और ऐसे एक मृत्यु महान मृत्यु मानी जाती थी, अनजाने में जो व्यक्ति जंगल में जाके मर जाए, बहुत ऊंची मृत्यु मानी जाती थी। वन में प्रस्थान करे, भगवान की खोज में व्यक्ति वन में चले जाए, और किसी के जाने बिना कहीं भी कहीं वन में मर जाए। देखिए वैदिक सभ्यता कैसी हुआ करती थी। आजकल तो ये कह भी नहीं सकते खुलेआम प्रवचन में, और वैसे आवश्यकता भी नहीं है इसकी। आजकल कलयुग में कौन ऐसे कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जंगल रहे ही कहां। तो आजकल तो भरत महाराज की तरह में करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल वन में प्रस्थान करने का मतलब है कि संसार के कर्तव्यों से मुक्त होकर हम पूरी सारा समय हमारा भगवान की सेवा में लगाएं। ये है आजकल का, आधुनिक समय का वानप्रस्थ। या हम धाम में चले जाएं, या शहर में अपने जगह में ही रह के पूरा समय भगवान की सेवा के लिए बिताएं। जैसे आप में से जिनकी आयु अब धीरे धीरे से बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है ना आयु, जिनकी आयु हो गई है तो आप सोच विचार करिए अब कि राधा माधव की सेवा के लिए आप अधिक समय यहाँ देंगे प्रचार के लिए वगैरह। तो ये वानप्रस्थ आश्रम भरत महाराज वहां रहने लगे और उन्होंने अपनी तपस्या वहां शुरू कर ली। तो कैसे सेवा उन्होंने की, क्या की, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो यदि अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आयु बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, वैसे जहां तक देखें सालों के हिसाब से बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब हाँ, हर दिन बढ़ती जा रही है ना हमारी आयु। आज 50 साल है तो एक साल बाद 50 साल हमारी आयु नहीं रहेगी ना, इस दृष्टि से हम बोल रहे हैं। घट रही है इस दृष्टि से कि पहले के जमाने में लोग 100 साल, 1000 साल, 10000 साल रहते थे, आजकल हम उतना नहीं रहते। हाँ, जो बची हुई आयु है वो घट, उसका घटन हो रहा है, वो कम होती जा रही है। बिल्कुल, बची हुई आयु को कृष्ण भावना में लगा देना चाहिए। आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यत यक्षौनीत उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ मृत्यु के एक दिन करीब पहुंच जाता है बस। तो साधारण व्यक्ति के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का ये तात्पर्य होता है, ये अभिप्राय होता है। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहता है, जो अपना समय कृष्ण कथा सुनने में और बोलने में बिताता है, उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए हर एक दिन जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, वो उसके लिए गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत के लिए द्वार उसके लिए खुलने लगता है। ठीक है, हाँ ठीक।
हरे कृष्ण, थैंक यू महाराज। आपने बोला कि ये हमारा भगवान की भक्ति पर हमारा अधिकार है, दाय भाग नियम से भगवान की कृपा पर। तो महाराज ये बहुत ही उत्साहवर्धक, मतलब
जन्म सिद्ध अधिकार है
महाराज। इस पे थोड़ा आप और प्लीज बोल सकते हैं 2 मिनट की? बहुत अच्छा फेथ गिविंग स्टेटमेंट रहा ये, प्लीज अगर आप थोड़ा सा।
एक स्वतंत्र सैनिक ने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसी तरह से कृष्ण भावनामृत हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों है? क्योंकि पिता की संपत्ति प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है, तो भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकार हम सबका है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान की संपत्ति प्राप्त करना ये हमारा अधिकार, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। देखिए भगवान की सेवा करने से लाभ कितना होता है, पता भी वही होता है, चिट्ठी जब आएगी तो। जब राजा के महल में रहने वाला जो नौकर होता है उसका पता और राजा का पता एक ही होता है ना। कोई चिट्ठी लिखे महाराज इतना लंबे चौड़ा नाम लिखेगा, पता वो होगा राजमहल का। और जो राजा का नौकर है उसका रिश्तेदार उसको कोई चिट्ठी लिखेगा तो वो पता वही होगा, है ना। और राजा का नौकर खाता क्या है? राजा के रसोई घर में जो बनता है, जो रह जाता है वो खा लेता है। तो राजा के लिए कम तो नहीं बना सकते ना, कम पड़ जाए तो राजा तो गर्दन ही काट देगा। तो पर्याप्त मात्रा में बनाना चाहिए ताकि कम ना पड़े। और बहुत कुछ रह जाता है तो कौन खाएगा? नौकर ही तो खाएगा ना। तो जो चीजें, जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन चखता है राजा, वो नौकर भी चख लेता है। दिन भर जैसे राजा अपने महल में, ऐश्वर्यशाली महल में घूमता फिरता रहता है, नौकर भी तो वही रहता है, उसी ऐश्वर्य के माहौल में रहता है। और राजा कपड़े कौन से पहनता है? बहुत अच्छे अच्छे रेशम के कपड़े, अच्छे अच्छे गहने वगैरह सब पहन लेता है। और वो कितने 100 साल तक वही कपड़े पहनता है? नहीं, एक दो दिन पहनता है, दे देता है। किसको देता है? नौकर, नौकर वो पहन लेता है। इसलिए जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का धाम सब हमें प्राप्त हो जाता है। सारष्टि, 5 प्रकार के मुक्तियों में से एक है सारष्टि, अर्थात भगवान जैसे ही ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। सारूप्य, भगवान के समान एक रूप प्राप्त करना। सालोक्य, भगवान के लोक में ही रहना। सामीप्य, भगवान के समीप या निकट रहना, उनके पार्षद बन के रहना। ये सारी चीज भक्त को मिल जाती है, तो अधिकार तो है ही ना। और कोई प्रश्न? हाँ,
थैंक यू महाराज। महाराज आपने बताया कि धर्म के नियमों का पालन करके करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि धर्म का त्याग करो, तो कैसे?
लेकिन किस धर्म का त्याग करो? झूठे धर्मों का त्याग करो, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे अन्य धर्मों को त्यागो। लेकिन कौन से धर्म को स्वीकार करो? माम एकम शरणम व्रज, ये सबसे ऊंचा धर्म है कि केवल मेरे शरण में आ जाओ। इस धर्म का पालन हमें करना है, इसको हमें स्वीकार करना है और अन्य धर्मों को त्यागना है। ये बात है, क्योंकि यही सबसे ऊंचा धर्म है, यही धर्म का सार है। ठीक है, हाँ जी। प्रश्न ये है कि शालिग्राम की सेवा केवल प्रभु जी कर सकते हैं कि माता जी भी कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो शालिग्राम शिला की सेवा करते थे अपने घर में। पहले ऐसे हुआ करता था कि हर एक ब्राह्मण के घर में अवश्य शालिग्राम शिला हुआ करती थी और ब्राह्मण सेवा करते थे। अब वैसे वैदिक सभ्यता के अनुसार तो माताएं अर्च विग्रह की सेवा नहीं किया करती थी वैदिक सभ्यता में, परंतु आजकल वैष्णव परंपरा के अनुसार हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में कभी कभी, हालांकि यहां नहीं लेकिन विदेशों में और घरों में भी माताएं भी करती हैं, क्योंकि हमारे लिए कर्म कारण के सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि भक्ति के सिद्धांत हैं। इसलिए हमारे भक्ति के पथ में थोड़ी बहुत छूट होती है इसके बारे में, तो इसलिए हमारे मंदिरों में कभी कभी माताएं भी ऐसे कर लेती हैं, क्योंकि भक्ति का प्राधान्य है हमारे जीवन। ठीक है, हाँ।
हरे कृष्ण महाराज, जो आपने बताया कि अगर हमें वैकुंठ लेकर जाना है तो हमें जीवित रहना है कृष्ण भावनामृत में, तो कृष्ण भावनामृत में जीवित रहने का मतलब क्या है?
आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। जैसे व्यक्ति को जीवित रहना है तो उसे क्या करना चाहिए? खाना पीना, है ना। उसी तरह से हमें भी आत्मा को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। जो आत्मा चाहता है वही देना चाहिए आत्मा को। ठीक है, हाँ, पीछे, आपके पीछे।
थैंक यू महाराज फॉर नाइस क्लास। वन क्वेश्चन है कि किस प्रकार से विद इन द हार्ट, हृदय में किस प्रकार से दृढ़ एक कनेक्शन आ सकती है हाथ में कि कृष्णा ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड कुछ भी गलत नहीं हो सकता भगवान क्रिएशन में। वट एवर इज हैपनिंग विद अस इज ऑल लाइक परफेक्ट दैट बिकॉज एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग फेथ इन that Krishna is our, like, he is our only well-wisher, real friend. The connection kaise banaye?
प्रश्न ये है कि ये दृढ़ विश्वास कैसे मन में बनाए कि जो भी कुछ भगवान हमारे साथ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, यही प्रश्न है ना। हाँ, लेकिन ये थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। यदि हमारे आप कहाँ पढ़ाई करते हो यार?
जॉब
कर रहे हो, तो आपके साथ में कोई व्यक्ति है ऑफिस दफ्तर में, वो कहते हैं चलो हम सिनेमा देखने जाएं, या हम होटल में चले जाएं, आपको ये तो भगवान के इंतजाम है तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए? नहीं। तो हमें सोचना भी चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। इसलिए हमें शास्त्रों को सुनना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम जान लें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद भी यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई प्रलोभन आ भी जाए तो उसे ना कहने के लिए ज्ञान होना चाहिए और वो दृढ़ता होनी चाहिए। तो कहाँ हाँ कहना चाहिए, कहाँ ना कहना चाहिए, ये भेद करने का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम कहेंगे कि हर चीज भगवान के योजना से हो रहा है। हाँ, तो किस दृष्टि से हो रहा है, ये भी अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ माइक यहाँ।
महाराज, आपने तत्तेनो कंपा वाला जो श्लोक कोट किया था उसमें तत्तेनो कंपा वाला श्लोक जो था उसमें अगर देखें तो कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होता है कि कोई भक्त कुछ प्रतिकूल बातें कह देते हैं, तो उसको भगवान का अरेंजमेंट या उस समय मन को संभाल के कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय मन काफी विचलित हो जाता है। और सेवा
ने उत्तर भी दिया है प्रश्न में कि भगवान की ही योजना है, कह दिया ना।
बट
कोई हमसे कुछ कह देता है, प्रैक्टिकल बात है, समझ लेना चाहिए कि भगवान दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हमें कुछ सिखा रहे हैं कि हमें कैसे नम्र होना चाहिए, हमारे अहंकार को कैसे वो तोड़ रहे हैं, कैसे हमें बहुत अच्छे अच्छे सबक सिखा रहे हैं। सिखाने वाला सामने का आदमी बच्चा भी हो सकता है, जैसे हिरण्यकश्यप के साथ में हुआ, और क्या भयंकर सबक सिखाया प्रहलाद ने छोटे से बच्चे ने। तो इतनी गंभीरता से इन चीजों को नहीं लेना चाहिए, हमें ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। हर बार इन्होंने हमसे ऐसे कहा, उन्होंने हमसे ऐसे किया, बस इसी पे हम रह जाएंगे, सारा जीवन इसी में बीत जाएगा, है ना। ये तो होना ही होना है, जब संसार में रहते हैं तो थोड़ा इधर उधर उधर होगा ही। दो आदमी साथ में रहते हैं तो कितना कुछ होता है, बहस होता है ना, तो थोड़ा कुछ तो होगा। इतनी गंभीरता से नहीं लेना इन चीजों को, हमें याद रखना है हमें करना क्या है जीवन में, हमें कृष्ण भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है। अब उस उद्देश्य को छोड़ के हम इन चीजों में हम अटक के रह जाएं कि इसने कल ऐसा कहा, परसों ऐसे किया और ये हुआ, भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, हाँ, जो अनुभव हुआ है उससे हमें सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। ठीक है, हाँ। भक्ति विनोद प्रभु, हरे कृष्णा, जय हरे कृष्णा। भक्ति विनोद प्रभु इज डिफरेंट पर्सन। Because you're no longer active president, so you're happy. हाँ जी, कोई प्रश्न? कहाँ माइक कहाँ है? हाँ जी, तो माइक ऑन कर दीजिए।
कि कलयुग में 1,00,000 साल आयु होती थी।
कलयुग में
1,00,000 साल आयु होती।
कलयुग में?
तो यहाँ पर कहा गया कि
नहीं नहीं
सतयुग में।
सत्य, हाँ।
तो यहाँ पर कहा गया ऋषभदेव महाराज ने 1,00,000,000 साल राज्य का भोग किया।
1,00,000,000 साल, हाँ। केवल एक लाख नहीं, कभी कभी इससे ज्यादा भी हुआ करती थी। हाँ, ऐसे होता है कभी कभी, जैसे रामायण में वर्णन है कि दशरथ महाराज की आयु 60,000 वर्ष की थी जब श्री राम का जन्म हुआ, 60,000 वर्ष। वैसे साधारणतः कहा जाता है कि त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है, परंतु यहाँ देखते हैं कि दशरथ महाराज की आयु 60,000 वर्ष की थी। तो ऐसे होता है। और कोई प्रश्न? अंतिम प्रश्न। हाँ जी, माइक ले
लीजिएगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा
महाराज, मेरा प्रश्न है कि वानप्रस्थ के लिए क्या गृहस्थ का त्याग करना?
हाँ, अब हुई ना बात। हम राह देख रहे थे, कोई तो प्रश्न करे। इतना हमने कह दिया वानप्रस्थ के बारे में, एक भी सवाल नहीं वानप्रस्थ के बारे में।
और वानप्रस्थ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से
महाराज। वैसे भरत महाराज की तरह वानप्रस्थ लेने की आवश्यकता तो नहीं है और नहीं संभव है, परंतु जैसे हम कह रहे थे प्रवचन में कि आजकल के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो वानप्रस्थ का मतलब है अपने व्यवसाय आदि को बंद रखना, छोड़ देना, या बहुत ही कम रखना, बस जितना केवल अपने आवश्यकता के लिए चाहिए, कम से कम, और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी कम करना, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देना सब कुछ। जैसे एक प्रथा है, जैसे जो सास है वो बहू के हाथ में चाबी का गुच्छा दे देती है, ये एक कथा है कि कंट्रोल, नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में, छोड़ने को सीखना चाहिए। जब हम पकड़ के रखते हैं समस्या हो जाती है, दुख बहुत हो जाता है, कष्ट होता है सबको। वानप्रस्थ मतलब छोड़ने को सीखना चाहिए। चलो, कब तक रहेंगे संसार में, क्यों हम पकड़ के रखना चाहते हैं हर चीज को, छोड़ दो। अब बच्चे समझदार हो गए, बड़े हो गए, चलो छोड़ दो उनके ऊपर, अब हम भगवान के इसमें लग जाते हैं। चलो, तो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए बिताना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, साधना अच्छी से करनी चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, मंदिर में आके सेवा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ऐसे हमारा वानप्रस्थ जीवन की का प्रारंभ हो सकता है, फिर आगे की बात, और आगे धीरे धीरे से हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे
भक्ति रसामृत महाराज की जय। आपकी सूचना के लिए फिर से बताएं कि महाराष्ट्र यहाँ 6 तारीख तक हैं, और आज संध्या के समय संध्या प्रोग्राम में 8 से 9 तक प्रवचन होगा, और कल से प्रातःकाल इसी प्रकार 8 से 9:30 भागवतम, और संध्या के समय 6 से 8 तक श्री प्रभुपाद और श्री गोस्वामी जी के धन्यवाद।
एक और थोड़ा सा संशोधन है कि कल से जो भागवत क्लास है